الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. देखते हैं इंशा अल्लाह ताला आज की आयात को, आयत नंबर 20 से 45 तक। सूरह काफ, वो सूरह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अहम मौके पर, जब मुसलमानों का बहुत बड़ा इज्तमा होता था, उस वक़्त पढ़ा करते थे। और वो कौन से मौके हैं? ईद के मौके पे, इसी तरह जुमे के खुतबे में, इसी तरह फजर की नमाज में। तो आज इस सूरह का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, और ये देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका इतना ज़्यादा आपको याद दिहानी, रिमाइंडर चाहिए है, जिनकी इतनी ज़्यादा ताकीद है कि जुमे के खुतबात में पढ़ी जाए, कि हत्ता कि एक सहाबिया फरमाने लगी कि वो इसी तरह इस सूरत को याद करने के काबिल हो गई, कि इतना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को पढ़ा करते थे। तो यकीनन अहम सूरत ही होगी, और यकीनन इसके मजामीन में कुछ तो ऐसी चीज है जो कि हमें बार बार याद करनी है, बार बार हमें इस चीज से गुजरना है और कभी भूलना नहीं है, और मुसलसल इसकी याद दहानी होती रहनी चाहिए हमारे दरमियान। तो सिर्फ आज पढ़ लेने के लिए नहीं है, बल्कि मुसलसल याद दहानी, यानी कि अगला कोर्स जब आएगा तो उस वक़्त हम दोबारा इसको समझेंगे और सुनेंगे। तो इसकी याद दहानी कीजिए अपने घरों में भी, और बार बार करते रहें। तो देखते हैं आज की आयात को। इससे पहले हम बहुत अहम एक मौजू को देख चुके हैं, जिसमें इंसान को ये याद कराया गया कि क़यामत का दिन वाक़े होने वाला है, और उसके दलाइल दिए गए, कायनात से भी दलाइल दिए गए, इंसान की अपनी ज़ात से भी, पिछली कौमों का भी जिक्र करके, और फिर ये भी कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो पहली दफ़ा पैदा किया वही दोबारा पैदा कर सकता है, और फिर क़यामत का दिन सिर्फ एक मिट जाने का और दोबारा खड़े होने का दिन नहीं, बल्कि हिसाब किताब का दिन है, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हम तो पता नहीं करें कि नहीं करें, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ हाजिर बाश फरिश्ते, जो किसी वक्त ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना पलक झपकते हैं, वो बस हर वक्त इंसान के साथ लगे हुए हैं और लिखते जा रहे हैं उसके आमाल को। इतनी बड़ी तैयारी हो रही है, इतनी बड़े उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तो जाहिर है किसी दिन के लिए रखा जा रहा है। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ बेकार नहीं होती, और ये भी यूं ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके पीछे भी कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से ये काम किया जा रहा है, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ कि हर इंसान के साथ, चाहे वो काफिर है चाहे वो मोमिन है, जब से वो बालिग हो जाता है फरिश्तों की ड्यूटी शुरू हो जाती है, और उसके मरते दम तक वो इसका जितना कच्चा छट्टा है सब लिखते रहते हैं, और उसकी नेकियां भी लिखते रहते हैं। तो इंसान इनसे गाफिल रहता है, लेकिन वो बिल्कुल तैयार और चाको चौबंद रहते हैं, वो गाफिल नहीं होते इंसान की हरकात से, उसकी बातों से। और हमें ये भी पता चलता है कि फरिश्ते बस दफ़ा इंसान की नीयतों को भी जानते हैं, और उसी मुताबिक वो इंसान के आमाल को लिख रहे होते हैं, वरना उनको कैसे पता चलेगा कि एक बंदा मुनाफिक है और एक बंदा सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ क्या कर रहा है। तो वो भी इंसान की लिखी जाती हैं। तो आगे हालात जो आखरत के हैं वो शुरू होते हैं कि जब इंसान की आंखें यहाँ बंद हो जाती हैं। तो जो आखिरी आयत हमने पढ़ी थी वो यही थी कि सकरातुल मौत इंसान के ऊपर जब आ जाते हैं तो वाकई उसके आगे हकीकत खुल जाती है, वो हकीकत जिससे वो भागता था, कभी उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, कभी सुनना नहीं चाहता था, कभी उसकी फिक्र नहीं करना चाहता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत मगन था और उसको लगता था ये दिन बड़ा दूर है, जब आएगा तो देखी जाएगी। लेकिन वो दिन आ गया, यही वो दिन था ना जिससे तू भागता था, भिदकता था, मौत उसको घेर लेगी, वो कहीं उससे भाग के नहीं जा सकेगा। मौत का जो इनकार है ना, वो काफिर भी नहीं कर सकता, जो अल्लाह ताला को नहीं मानता वो भी नहीं कर सकता। ये वो हकीकत है जो दिन और रात हम अपने सामने देखते हैं, लोग जा रहे हैं और कोई एक वक्त नहीं है कि जिसके ऊपर सबने जाना है, कोई एक एज नहीं है जिसके ऊपर सबने जाना है कि 60 का हो गया तो चला जाएगा, 100 का हुआ तो जाएगा, 90 का हुआ तो जाएगा, बल्कि इसका वक्त जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, वो चाहे माँ के पेट में हो, चाहे बचपने में हो, जवानी में हो, या उधेड़ उम्र में हो, ये उस रब का फैसला है कि जिस वक्त किसका उसने मौत का वक्त लिखा है उसी वक्त वो इस दुनिया से रुखसत होगा। ये याद दिला के अब आगे क्या होगा? बाज लोगों की तो कयामत मौत के साथ ही शुरू हो जाती है, और बाज वो होंगे जो कयामत के दिन जिंदा होंगे, और वो उस दिन जब कयामत का दिन आना होगा उस दिन उनको मौत आएगी, यानी जो बिल्कुल एंड ऑफ टाइम में आएंगे लोग जो उस वक्त जिंदा हैं वो कैसे मरेंगे? बहुत सारे तो मर चुके आज तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेके कब तक लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कयामत तक जिंदा हैं उनकी मौत कैसे आएगी? वनुफिखा फिस्सूर, इस सूर को जब फूंका जाएगा तो हर एक की मौत का दिन आएगी। वो चाहे कोई फरिश्ता है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे कोई हशरात है, चाहे कोई जिन है, चाहे कोई शयातीन है और इबलीस है, कोई भी है, उसकी मौत का दिन ये है जिस दिन नुफ़ा फूंका जाएगा सूर के अंदर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं कैसे खुश हो जाऊं या मैं कैसे चैन से बैठ जाऊं कि इसराफील अलैहिस्सलाम ने उस नुफ़े को यानी सूर को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है और गर्दन झुकाए हुए अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि कब हुक्म हो तो कब वो उसमें फूंक दें। तो सहाबा ने फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह हम क्या कहें? आपने फरमाया कहो हसबुनल्लाहु व निअमल वकील, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा सिखा दिया कि ये कलमा अदा किया करो जिस वक्त के यानी सूर फूंका जाएगा और इसकी जो इंसान के ऊपर वहशत है वो होगी तो हसबुनल्लाहु व निअमल वकील ये पढ़ा जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि वो दिन है जो सबकी मौत का दिन है और वो दिन है जो सबके लिए घबराहट का दिन है। वजाअत कुल्लु नफ्सिन, और आ जाएगा हर नफ्स माहा साथ उसके, या आ गया हर नफ्स। अब आप देखें ये जो टेंस है ना, इसका सीगा है ये पास्ट का है, नुफिखा भी माजी का सीगा है, और इससे बताना मकसूद ये होता है कि ये बातें ऐसी ही हैं, समझ लो कि जैसे हो चुकी, जैसे हो चुकी, यानी ऐसा नहीं कि ऐसा होगा, जो चीज होगा में कही जाती है ना फ्यूचर में, उसके बारे में इंसान के अंदर कुछ शक आ सकता है कि जो ये होना है तो पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन जो चीज कल हो चुकी, मिसाल के तौर पे कल किसी की वफात हुई तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हुई, या कल होगी तो हाँ ये कहा जा सकता है, पता नहीं होती है कि नहीं। डॉक्टर कितने लोगों को कह देते हैं हाँ इनके मरने का वक्त है और बस इनके 24 आवर्स हैं, लेकिन नहीं होता, तो कुछ खत्म ही नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पास्ट में हो चुका ना, कल हो चुका, वो श्योर है कि हो चुका है, उसमें कोई शक नहीं। जो कल फौत हो चुका वो हो गया है, इसी तरह डन है ये बात, समझ लो हो चुकी। ये इस कदर यकीनी बात है, यानी इंसान के यकीन के लिए ये बताया गया, ये इतनी यकीनी बात है, इसमें जरा भी तुम्हें शक ना हो, इसलिए पास्ट का सीगा लाया गया। और अब जब इंसान सारे वफात पा गए, जब इंसान सारे मौत के मुंह में चले गए, तो अब दोबारा खड़े होने पे उनके साथ एक साइक और शहीद हो गए। अब ये नुफ़ा कितनी दफा फूंका जाएगा, ये सूर कितनी दफा इसके अंदर फूंक मारी जाएगी। बाज़ जगह आता है कि दो नफ़े हैं, बाज़ जगह आता है तीन है। ज्यादा दो का जिक्र है कि एक मौत का है और एक दोबारा खड़े होने का है, यानी ऐसी एक बारिश होगी जिससे इंसानों के जिस्म जमीन से उगेंगे और उसके बाद इनके अंदर रूह चली जाएगी और फिर ये देखते सुनते और बिल्कुल अलाइव होंगे, जिंदा होंगे। अब जो पहला नुस्खा है, बाज ने जिनको तीन नुस्खे कहा, उन्होंने कहा पहला बेहोशी का या पैनिक का जिसको कहेंगे, दूसरा मौत का और उसके बाद तीसरा खड़े होने का। जो कहते हैं दो हैं, बात एक ही है कि एक जब नुस्खा शुरू होगा, फूंका जाएगा, तो इस कदर तबाही होगी और इस कदर पैनिक होगा, इस कदर ज्यादा बड़ी परेशानी होगी कि कोई भी जिंदा नहीं रह सकेगा। यानी ऐसा ये आवाज होगी कि जो इस कदर शदीद और इतनी खौफनाक होगी कि लोग गिरते जाएंगे और मरते जाएंगे, और लोग ही नहीं हर चीज। और इसकी वजह से ना सिर्फ इस जमीन के ऊपर बल्कि आसमानों में भी तबाही का एक समा होगा कि आसमान फट रहा है, तारे गिर रहे हैं, सूरज बेनूर हो गया, चांद बेनूर हो गया। तो इतना कुछ हो रहा है आसमानों में भी और जमीन पे भी। तो क्या वो आवाज होगी जो चलती जाएगी मुसलसल, बंद नहीं होगी, हत्ता कि एक एक जीरो खत्म हो जाए, कोई बाकी नहीं बचाएगा सिवाय अल्लाह की जात के, हत्ता के मौत का फरिश्ता भी, मलकुल मौत भी मर जाएगा इन द एंड, ने कोई भी नहीं बचेगा। और ये फरिश्ता जो सूर फूंकने पे मुकर्रर है, इसको भी मौत आ जाएगी, एक अल्लाह की जात सिर्फ बाकी रहेगी। उसके बाद अल्लाह ताला जिंदा फरमाएगा सूर फूंकने वाले फरिश्ते को, और वो सूर फूंकेगा, मगर कितने अरसे बाद, कितने अरसे तक सब मरे रहेंगे ये किसी को नहीं मालूम, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 का बताया था, रावी को ये याद नहीं। फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं आपने 40 साल फरमाया, 40 दिन फरमाया, 40 महीने फरमाया, क्या फरमाया, बस 40 याद है। देखिए वो इससे पता चलता है वो जरा सा भी इजाफा नहीं करते थे कि चलो खुद ही अपनी तरफ से ही कुछ बना दिया जाए। तो 40 के फिगर को उन्होंने याद रखा। अब 40 सदियां हैं, 40 साल हैं, कब तक, वल्लाहु आलम। इससे अल्लाह ताला की अजमत, उसकी कुदरत, उसके जलाल, उसकी कुव्वत, इस सब का अंदाजा होता। और जो आज खुदा बने बैठे, पता चलता है कि इनकी हस्ती तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। तो जब ये नुफ़ा दोबारा फूंका जाएगा, उस वक्त लोग उठेंगे और उनके साथ ही एक साइक और शहीद होगा। ये कौन है साइक और शहीद? ये दो फरिश्ते हैं, एक उसको हांकने वाला और एक उसके आमाल का गवाह, जो गवाही देगा जाके अल्लाह ताला के सामने कि ये मेरे पास का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड लेके पेश किया जाए, तो ये रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाला फरिश्ता। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने और भी तफसीरें बयान की हैं। बाज कहते हैं कि एक है जो फरिश्ता है और दूसरा शहीद जो है, साइक फरिश्ता और शहीद जो है वो इंसान का अमल है। और बाज कहते हैं कि इंसान खुद है अपने ऊपर गवाही देने वाला, तो इंसान खुद शहीद है। लेकिन ज्यादा राजे प्रेफर जो कॉल है वो यही है कि ये दोनों फरिश्ते हैं और एक उसको लेके आने वाला अल्लाह ताला की अदालत में पेश करने वाला, दूसरा उसका गवाह या उसका अमालनामा प्रेजेंट करने वाला जिस पे उसको मुकर्रर किया गया था कि इसका अमालनामा बनाया जाए। तो इस तरह से ये दो फरिश्ते हैं जो इंसान को फौरन उठते ही जैसे समझ लें कि पकड़ लेंगे, ऐसे ही जैसे कोई मुजरिम को पुलिस पकड़ लेती है ना, अब वो उनके काबू में आ जाता है, अब वो उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे और उसकी रिपोर्ट वहां पे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे ये दो फरिश्ते उसके साथ इस तरह से होंगे और ये हर एक के साथ होंगे, चाहे कोई नेक है, चाहे कोई बद है, चाहे वो कोई काफिर है, चाहे कोई मोमिन है, हर एक के साथ ये फरिश्ते उसको लेकर चलेंगे और अल्लाह ताला की अदालत में पेश करेंगे। सोचें कि ये किस कदर सीरियस बात है, कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये कितना हवलनाक दिन होगा और कैसी वो पेशी होगी जो अल्लाह ताला के आगे होगी, जिसकी वजह से इंसान कितना घबरा जाएगा उस वक्त कि ये मेरे साथ क्या होने वाला है। लकद कुंत फी गफलत मिन हादा, तू गफलत में था इससे। अब वहां पे इसको ले जाके कहा जाएगा, अच्छा ये भी कहा जाता है कि बाज को तो आ, आ, सीधे चला के लाया जाएगा, बाज सर के बल चल के आ रहे होंगे, बाज सवारियों पे आ रहे होंगे, तो लेकिन साथ साथ फरिश्ते तो होंगे, लेकिन किसी का ऑनर इतना बड़ा होगा, जो मुअज्जिनीन है उनके लिए सवारियां होंगी, जो मुतकब्बिरीन है वो इस तरह सर के बल चल के आ रहे होंगे। तो हर एक दो गार्ड्स के साथ हशर के मैदान में पहुंच चुका है। अल्लाह ताला ने देखे इंसान दुनिया में बैठा हुआ है ना, और ये बातें कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बयान कर सकता, आपकी दुनिया का कोई नॉलेज जो है, चाहे साइंस फलसफे साइकोलॉजी कुछ निकाल लें, कोई भी आपको ये बात नहीं बता सकता कि उसके बाद होना क्या है। ये देखें, ये वही का इल्म ही हमें बता सकता है, वो रब ही बता सकता है जो आलिमुल गईब है, जो गैब को जानने वाला है, उस दिन होगा क्या, और जिसकी सारी तैयारी की गई है। तो उस दिन वो लेकर आ रहे हैं इसको और ये कहीं भाग नहीं सकता, छुप नहीं सकता, फरार नहीं हो सकता, और ये हर एक के लिए। अब जो मरे थे वो तो जिंदा हुए, जो सूर से मरे थे, सूर की आवाज से, लेकिन उसके अलावा कब्रों से और पुरानी कब्रों से भी लोग उठ रहे हैं और ये दौड़ रहे हैं, और उनके साथ ये फरिश्ते हैं। मिजाल नहीं किसी की कि कोई इधर से उधर हो जाए। अब उनसे कहा जाएगा, तू गफलत में था इससे, मिन हाजा इससे गफलत में था, किससे, इस दिन से। फकशफ नान का गितौआ का, तो हमने खोल दिया तेरा पर्दा तुझसे, जो तेरी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ था ना वो हटा दिया। फबासा रुका, तो निगाह तेरी, बसर तेरी, निगाह को कहते हैं ना, आज के दिन बड़ी तेज है। आज तो कोई भी नहीं कह सकेगा मुझे तो समझ नहीं आ रही, अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा ये कैसे हो सकता है, नहीं अब तो बड़े अटेंटिव है। और ये नहीं कोई बेहोशी का आलम है इनके ऊपर, कोई इनको समझ ही नहीं, बिल्कुल चाको चौबंद ज़हन बिल्कुल सही से काम, जैसे हम इस वक्त जिंदा बैठे हुए हमारा दिमाग चल रहा है ना, इस तरह इंसान का दिमाग बिल्कुल चल रहा होगा, ये अलग बात है उसके ऊपर जो हैबत का आलम होगा, जो कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, जो इंसान ऐसा होगा जैसे नशे में है खौफ की वजह से, मगर ऐसा नहीं कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं ये कौन सा दिन है, बड़ी अच्छी तरह पता होगा, बहुत अच्छी तरह जानता होगा कि ये कौन सा दिन आ गया, उसको अब पता होगा कि यही वो दिन है जिसका वादा दिया जाता और जिससे मैं गफलत में था। वो तो गफलत, बेपरवाही, गफलत कहते हैं इंसान किसी अहम चीज को भूल के किसी गैर अहम चीज में लग जाए। मिसाल के तौर पे आज आपकी फ्लाइट है, आपने अपनी फ्लाइट पकड़नी है और आप घर में ही बैठे रह गए, इतनी इंपॉर्टेंट आपकी कोई मीटिंग है, या जैसे मैंने कहा फ्लाइट है, आप लोगों को याद ही नहीं कि आपको जाना है आज, और आपने उसकी ना तैयारी की भी ना कुछ, आराम से बैठे हैं, तो कोई आके बताता है आज तो आपकी फ्लाइट थी। तो अब ये जो आप भूले हुए थे वो क्या है, गफलत, कि इंसान कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज को भुला के किसी गैर इंपॉर्टेंट चीज में लग जाए। यानी इंसान इस दुनिया में किस तरह रह रहा था, गफलत में रह रहा था, इससे किसी और चीज से नहीं, जॉब करने से गाफिल नहीं था, पढ़ाइयों से गाफिल नहीं था, ये नहीं कहा जा रहा तुमने पैसा नहीं कमाया, तुमने घर को नहीं संवारा, तुमने पूरे फैशन नहीं किए, उससे गफलत में थे, उससे नहीं थे, इस दिन से गफलत में थे, इस दिन को भुलाया हुआ था। अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त कुराने पाक में फरमाया, इक्तारबा लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, और उनका हाल क्या है, वो गफलत में पड़े में एराज किए मुंह मोड़े, उनका हाल ये है कि मौत इनके सर पे खड़ी हुई, हिसाब का वक्त। देखिए मैंने आपको बताया ना, मौत के साथ ही जिनके इस दुनिया में इस वक्त मौत आ रही है, नफखा फूंके जाने से पहले जिनकी भी मौत है, वो सब अपनी एक छोटी कयामत से गुजर रहे हैं, छोटी कयामत एक शुरू हो चुकी है उनकी, बड़ी तो उस दिन आएगी ना, ये हिसाब किताब तो शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, क्या मुनकर नकीर नहीं करेंगे हिसाब किताब कब्र में, क्या वो गैब की दुनिया नहीं देख लेगा, उसकी तो कयामत शुरू हो गई, उसको तो सब कुछ नजर आ रहा है। तुम इससे गफलत में थे, और वैसे भी देखा जाए तो कयामत करीब ही है, कयामत दूर नहीं है, इन्नहुम यरौनहु बाइदा व नराहु करीब, अल्लाह ताला ने फरमाया ये उसको दूर देखते हैं, बड़ा भी टाइम है और हम कहते हैं करीब है, मर गए तो खत्म हो गया आमाल नामा, अब आगे नहीं बढ़ सकता, अब वहीं पे बुक बंद हो गई, अब क्या कर सकते हैं, अब तो कयामत के दिन ही उठेंगे और जवाब देंगे। लेकिन इंसान देखो कि कितना गाफिल है, वो अपने दिन और रात गुजारता जाता है और उसको कोई फिक्र नहीं कि मुझे अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है, उसको फिक्र क्या है, इस दुनिया का तो हर इल्म ले लिया, यालमूना जाहिरम मिनल हयात दुनिया, वो उन्होंने दुनिया का जाहिरी इल्म सारा ले लिया, इस दुनिया की जिंदगी, वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, लेकिन आखरत के मामले में ये गाफिल, बार बार कुरान कहता है कि गफलत किस मामले में, आखरत के, शादी एक अहम मामला है, उससे हम गफलत में नहीं रहते, हमें याद ही ना रहे कि शादी है तो हम उसकी तैयारी ही नहीं कर रहे थे, और आज हम सो के उठे हमें पता चला ओ आज है मेरे बच्चे की शादी, मुझे तो याद ही नहीं रहा, ये हम कभी नहीं कहते। जॉब पे जाना है, कोई उठ के ये नहीं कहता ओ मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज जॉब पे जाना है, किसी की अहम मीटिंग है, किसी को कोई फ्लाइट पकड़नी है, कोई सफर करना है, कहीं जाना है, पहले से बक्से पैक करके रख देते हैं दरवाजे पे कि सुबह फ्लाइट है, कोई नहीं कहता हो मुझे तो भूल ही गया कि फ्लाइट है। तो हम यहाँ के मामलात में कभी भी भूले हुए नहीं, गफलत में नहीं रहते, हमारी सारी गफलत जो है वो आखरत के बारे में, हालांकि फ्लाइट तो शायद पकड़ सके या ना पकड़ सके, और फ्लाइट का पता नहीं, हो सकता कैंसिल ही हो जाए, फिर भी हम गफलत में नहीं रहते। शादी का पता नहीं है, हो भी सकती है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, शादी कैंसिल हो सकती है, हमें नहीं पता ये मीटिंग होगी कि नहीं, कैंसिल हो सकती, लेकिन उनके लिए हमारी कितनी तैयारी है, हाँ, मगर एक जगह पे हमारी तैयारी बिल्कुल, हम उससे गाफिल रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कर लेंगे जब वक्त आएगा, देखी जाएगी, वो है आखरत, जिसके लिए अल्लाह ताला माजी का सीगा यूज कर रहे हैं कि ऐसे समझ लो हो चुकी। ये इतनी यकीन है, कोई चीज इसको टाल नहीं सकती कि ये ऐसी चीज नहीं है कि शायद हो सकता है, पता नहीं हो भी कि ना हो, शायद अल्लाह ताला अपना इरादा ही बदल दे, अब उसके बाद कयामत आए नहीं, उसने जो फैसला कर दिया, वो अटल है और नहीं कभी बदलेगा। लेकिन उतनी हम उससे बेफिक्र हैं, और हम किधर को भाग रहे हैं, ख्वाहिशात के पीछे, यहां की दुनिया और बनाने के पीछे, इसकी मोहब्बत में हमने दीन को भुलाया हुआ है, आखरत को भुलाया हुआ है, उसकी फिक्र नहीं, उसकी सोच नहीं, और यहां पे इस कदर मगन हो चुके हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि हमें जाना है। दुनिया के मसले ही हमारे ऊपर इतने सवार हैं, आखरत का मसला तो हमने मसला बनाया ही नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझते, वो तो जैसे लगता है कि जैसे हमारे दाएं हाथ का खेल है, वहां पे तो ऐसे ही हमने पार हो जाना, जिसके पीछे रो रो के चले गए सहाबा कराम, जिसके पीछे अंबिया ने फिक्रें की, लेकिन हमारे पास ना कोई अमल ना कुछ, और फिर हम कितने गाफिल हैं। तो उस दिन ये गफलत का पर्दा बिल्कुल हट जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, युनब्बाउल इंसानु यौम इज़िम बिमा कद्दम व अख्खर, उस दिन इंसान को बता दिया जाएगा क्या आगे भेजा क्या पीछे छोड़ा, क्या क्या चीजें पीछे छोड़ा है, कितने चीजें कर सकते थे नहीं की। फिर अल्लाह ताला ने खुद फरमाया बल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, इंसान तो खुद ही पता है, उसको उसको अच्छी तरह पता है कि वो क्या करता रहा, उसने क्या तैयारी की थी, कितना किया था, कितनी गफलतों में रहा, वलो अल्का माजीरा, चाहे कितनी भी माजरतें देता रहे। ये सूरह कयामा में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, आलिमत नफ्सु मा कद्दमत व अखरत, ये भी तो हमें बताया गया तीसरे बारे में, इंसान उस दिन उसको पता चल जाएगा अच्छी तरह, फिर कहेगा ना या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, उस दिन कहेगा हाय काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, लेकिन आज नहीं इंसान सोचता। अल्लाह अकबर, उस दिन नजरें तेज हो भी गई और होश संभाल भी लिया तो क्या फायदा उस दिन होश में आने का, फिर तब उस वक्त हसरत होगी इस एक-एक लम्हे पे, एक-एक दिन पे, एक-एक महीने और एक-एक साल पे मैंने किधर गुजार दिए। कभी हमें सोच आती है किधर को भागी जा रही है मेरी जिंदगी, और इतनी तेजी से हफ्ता गुजरता ही ऐसे है कि जैसे पलक झपकने में गुजर गया, महीने जा रहे हैं, साल पे साल आते जा रहे हैं, साल खत्म होने को आ जाता है, अभी शुरू हुआ होता है, अभी हम कहते हैं अभी साल शुरू हुआ है, और फौरन नहीं, बस रमजान आया, मिड आया साल का, साल खत्म होने के ऊपर आ गया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, ऐसे लग रहा भागी जा रही हमारी जो जिंदगी है ना, समझ ले बर्फ की सिल की तरह, जैसे बर्फ की सिल गर्मी ज्यादा हो तो किस तरह पिघलती है, इस तरह कुर्बे कयामत पे जिंदगियां ऐसे तेजी से पिघलेंगी, बरकत खत्म हो जाएगी, और हमें वक्त ही नहीं कि हम अपना मुहासबा भी करके देख लें, कितनी दफा सोचें दिन में, खुद सोचें कितनी दफा मुझे याद आता है ये मैंने अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है, ऑनेस्टली हम खुद अपने हर एक अपने आप से पूछे कितनी दफा याद आता है कि मैं मरना है, मुझे अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है, और इस ये सोच आ जाती है, और मैं फिर घबरा के कहती हूँ अल्लाह मुझे माफ कर देना, दावे तो हम सारे बहुत करते हैं नहीं जी हमारे पास कुछ भी नहीं, नहीं हमारे पास अमल नहीं, लेकिन कितनी दफा फिर सोच आती, इसका मतलब गफलत है ना हमारे ऊपर छाई हुई, अभी ये कुरान पढ़ने के बाद भी हमारे ये हाल है, और जब नहीं है कुरान ही जिंदगी में नहीं है, और बार बार याद दहानी ही नहीं हो रही, तो फिर तो सोचे हाल क्या है, फिर तो सोचे कि बिल्कुल ही डूब गए, बिल्कुल ही अंधे हो गए, और जागना भी नहीं चाहते, इसलिए कि मजे में है ना, मजे कहीं खराब ना हो जाए, जब मजा बहुत आ रहा है ना इस दुनिया में, तो अगर जिक्र किया मुहासबे का, मौत का, कयामत का, तो मजा किरकिरा हो जाएगा, मजा खराब हो जाएगा। तो मैं तो सोचना ही नहीं चाहती, तो इसलिए लिहाजा इसको एक तरफ रख दो, इसके बारे में बात ना करो। कुरान की तरफ भी इसलिए नहीं आते कि ये बातें होंगी ना तो ये तो फिर हम नहीं सुनना चाहते, जागना ही नहीं चाहते गफलत से। ऐसे ही जैसे अंधेरे में कोई सो रहा है गहरी नींद, आप लाइट जलाते हैं तो क्या कहता है, बंद कर दो लाइट, बंद कर दो मुझे सोने दो। हम ऐसे ही सोए में कि ये रोशनी, ये नूर कुरान का, ये हमारे सामने है, ये हमें जगा रहा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमें सोने दो, हमें गफलतों में रहने दो, हम मजे से सो रहे हैं। और ना उठे तो उस दिन तो फिर गफलत खत्म होनी है। इससे तो गफलत में था ना कि आंखें बंद की नहीं थी, घर, जॉब, बिजनेस, पढ़ाइयां, स्कूल, कॉलेज, बच्चे, ग्रोसरी, बिल, बस जिंदगी इसी में चलती चली जा रही थी, और उधर से फरिश्ते आ गए। कभी सोचा करें कि यही चल रहा हो और इस वक्त मेरे पास फरिश्ते मुझे लेने के लिए आ जाएं, तो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की तमन्ना होगी? ये फलां खाना नहीं खाया वो खा लूं, या हाँ बच्चे की शादी जल्दी से कर दूं, या वो पार्टी तो अटेंड कर लेती, या मुझे तो जॉब पे जाना था, या मेरा बिजनेस, इतने का मेरा बिजनेस का नुकसान ना हो जाए, मुझे तो ये डील बनानी थी, ये इन्वेस्टमेंट करनी थी। कुछ भी फिक्र नहीं रहेगी फिर उस वक्त क्या फिक्र रहेगी? सोचें, आंखें बंद करके अपने आप को इमेजिन करें और सोचें कि उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की परेशानी होगी जब टाइम ओवर हो जाएगा। कहीं ये तो नहीं कि मैं फरिश्तों से मिन्नतें करने लगूं कि हाय मुझे सदका करने दें प्लीज, मेरे पास अभी काफी पैसे पड़े हुए हैं, मैंने तो सदका करना है, करना है, मैंने सोचा हुआ था मैं करूंगी। बस रह गया जैसे यहां पे आपके कोर्स में आपको कहा जाता है आप अपने टेस्ट पूरे कर लें, टेस्ट पूरे कर लें, आप अपने काम पूरा कर लें, हम आपको ये डेडलाइन देते हैं, आपको बता भी दिया जाता है, फिर भी नहीं करते। जब वो डेडलाइन गुजर जाती है तो फिर हम कहते हैं ओहो मैंने तो ये करना था, अब मुझे और टाइम दे, मैंने तो करना था, अभी ये तो बताया जाता है, ये डेट है, ये डेडलाइन है, इस पे आप ये काम मुकम्मल करके दे दें। फिर भी कोई कहता नहीं जी हमारे मेहमान आ गए, कोई कहता हम कहीं चले गए, कोई कहता हम बीमार हो गए थे, कोई कहता हमें ये हो गया था। एक एग्जाम्पल है ना, हमें होश तब तक नहीं आता जब तक डेडलाइन गुजर नहीं चुकी होती। कहीं यही रवैया हमारा आखिरत के बारे में तो नहीं? इस डेडलाइन का तो पता भी नहीं है कि ये कब आ जाएगी, पता नहीं है। फिर हम कहीं ये ना कहने वाले हो हम क्या करें, हम तो बड़े मसरूफ थे, क्या करें जॉब में टाइम ही नहीं मिला, क्या करें बिजनेस पे टाइम नहीं मिला, क्या करें बच्चों में टाइम नहीं मिला, क्या करें घर बार के इतने मसाइल थे, क्या करें जिम्मेदारियां मेरी इतनी थी, मैं तो बिजी ही बहुत रहती थी, मुझे पता ही नहीं चला। जब इंसान का यही रवैया बन जाए ना कि वो हमेशा ही चीजों को टालने वाला हो, कर लेंगे जी कर लेंगे, कर लेंगे जी कर लेंगे, ये रवैया हमारे हमारी आम जिंदगी में भी नजर आते हैं कि दीन के मामलात, ये जो अहम मामलात हैं उनमें भी हम किस तरह डिले किए जाते हैं, और नेकियों को भी ऐसे ही डिले करते रहते। कोई रोजे पड़े में रखने वाले कब रख लेंगे ना रख लेंगे, नमाज पढ़ने वाली है नहीं पढ़ लेंगे ना पढ़ लेंगे, किसी का हक देना है दे दूंगी ना, कौन सा भागा जा रहा है, किसी का कर्जा अदा करना है तो कर्ज अदा करना है तो क्या हो गया कर ही देंगे। तो आगे फरिश्ते आ गए तो कहीं ये ना कह रहे हो हम कि प्लीज मुझे छोड़ दें, मैंने तो अभी बस एक बस और नमाज पढ़ लूं, वो वाला सजदा कर लूं जिसमें मैं रो रो के अल्लाह ताला को राजी कर लूं, जिसमें मैं रो रो के इस्तेफार कर लूं। कहीं मैं ये ना कह रही हूं कि वो प्लीज मुझे बस एक चांस दे दे, मैं जिस सदका जारिया का एक काम करना था, जस्ट अ क्लिक अवे था, मैंने वो सदका जारिया का मैं अपना काम कर लूं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ये कहने वाले हो जाए, अब उन्होंने पकड़ लिया तो जाने नहीं देंगे, आवाज बंद हो जाएगी, कदम रुक जाएंगे, जान जिस्म से निकलने लगेगी, फिर कुछ भी कहेंगे माना नहीं जाएगा। तो ये तो एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक साल कीमती है जो गुजरे जा रहा है और हमें याद ही नहीं कि हम किधर को भागे जा रहे हैं। हम अपनी बर्थडे मना के खुश हो रहे हैं, मैं इतने साल की हो गई, ये नहीं पता कि इतने साल गुजर गए, थोड़े रह गए, जाने का वक्त आ गया और करीब आता जा रहा है। उलझे हुए हम दुनिया के झमेलों में। मैं ये नहीं कहती कि आप सारे कोई वक्त को जाया कर रहे होंगे, हैं लोग जो जाया भी करते हैं, लेकिन हो सकता है आप सारे बड़े इंपॉर्टेंट काम ही कर रहे हो, मगर आखरत से मुतालिक नहीं है वो, अगर तो गफलत ही तो है ना। फिर देखें अपने औकात को, देखें कि कहां से वक्त निकालना है, चाहे हम जरूरी काम करते हैं, फिर भी देखें, घड़ी देख के काम करें। फोन कॉल पे मैंने कितना वक्त लगा दिया, नहाने जाती हैं तो कितनी देर नहाते रहते, कई लोग आधा आधा घंटा नहाते रहते हैं, शावर के नीचे खड़े हुए, बस भी पता ही नहीं वक्त किधर चला गया। कई खाना पकाने में ही सारा दिन लगा देते, किचन ही से नहीं फारिग हो पाते, चलो ये भी बना लेती हूँ, ये भी बना लेती हूँ, इसको इस तरह सजा के रखती हूँ, इसको ऐसे करती हूँ, इसको ये करती हूँ, खाने ही नहीं खत्म हो रहे। कितना वक्त गुजर गया किचन में, सफाई में कितना मेरा वक्त लग रहा है। इन सब में से अगर 10-10 मिनट भी निकालें, कुछ थोड़ा सा कमी कर दें, तो उस 10 मिनट में, 5 मिनट में भी हम कुरान का एक सफा पढ़ सकते हैं, दो नफल अदा कर सकते हैं, हम कोई और भलाई का काम कर सकते हैं। तो घड़ी देख के काम करें, घड़ी चल रही है ना तो हमारी जिंदगी को खत्म करती जा रही है। एक ड्रामा देखें, कम से कम 1 घंटे का तो होता ही होगा, फिल्में देखें उससे भी ज्यादा की, इतनी देर तो गुजर ही गई मेरी जिंदगी में से, इतनी तो माइनस हो ही गई। कई लोग बाथरूम में बहुत देर लगाते हैं, तो इतनी देर, इतना टाइम बाथरूमों में ही लगा दिया। कई सोते हैं तो सोते ही जाते हैं, 8-8, 9-9 घंटे सोए रहते हैं, सोचे कहाँ से कम करके और मैं अपनी आखिरत के लिए लगा सकती हूँ, क्योंकि इन्हीं 24 घंटों में से ही हमने लगाना है। अल्लाह अकबर। तो आज तेरी नजर बड़ी तेज हो गई, इसीलिए उलमा कहते हैं कि दुनिया और आखिरत में निस्बत ऐसी ही है जैसी ख्वाब में और बेदारी में। समझ ले अभी ख्वाब में है, उठ जाएंगे उस वक्त और सब कुछ नजर आने लगेगा। ये बेपरवाही, ये सुस्ती, ये गफलत सब उस दिन खत्म हो जाएगी। हम जो भूले हैं वो सबक याद आ जाएगा, निगाहों से पर्दे हट जाएंगे, अब तो निगाहें सब कुछ देख रही हैं ना। देखो वो ही दिन आ गया जिसकी बातें हुआ करती थी। अब देखना हमें ये चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे गफलत में डालती हैं, क्या ऐसी पार्टीज हैं, क्या ऐसे दोस्त हैं, क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं, कौन सी चीज है जो हमें गफलत में डालती है, क्या कुछ वॉच करते हैं हम, देखते हैं कोई ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं जिनसे गफलत में चले जाते हैं, ऐसी चीजें सुनते हैं जिससे गफलत में चले जाते हैं, तो क्या चीज मेरी गफलत का सबब बन रही है। इसको जरूर हम सोचें। वकाला, और कहेगा करीनहू, उसका साथी। अब ये कौन सा साथी है? साइक और शहीद भी हो सकते हैं, जो आमाल लिखने वाला था, गवाही देने वाला था, वो कहेगा, या इससे मुराद शैतान भी हो सकता है जो इंसान के साथ लगा हुआ था और उसका करीन बन गया था। नहीं, जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहता है तो शैतान उसका साथी बन जाता है, ये कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो अब वो आके करीन कहेगा, हाजा माल अदैया आतीद, ये है जो मेरे पास है हाजिर, ये था जो मेरे जिसके साथ मैं लगा हुआ था, जिसको मेरे हवाले किया गया था, जिसका रिकॉर्ड मैं बना रहा था, फरिश्ता कहेगा ये है मेरा साथी, यानी आप पेश कर रहे हैं ना उसको। और शहीद भी हो सकता है, साइख भी हो सकता है, शहीद भी, वो कहेगा ये है जो हाजिर है, यानी जो रिकॉर्ड मेरे पास है मैं उसको पेश कर रहा हूँ। या शैतान भी कह सकता है कि ये है मेरा साथी जो मेरे साथ रहा। इंसान को कहा जाएगा ना इकरा किताब कफा भी नफ्स कल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ अपनी किताब, अब तू अपना हिसाब लेने के लिए तो खुद ही काफी है। तब नहीं गुजरे लम्हात याद आएंगे, तब नहीं ये दुनिया की जिंदगी, ये दिन और रात याद आएंगे, हम बेकार ही गुजारते रहे, कितना अफसोस होगा ना फिर इतने। ये मेरे पास ताकत भी थी, कुव्वत भी थी, मैं अच्छी भली हुआ करती थी, मेरे पास रिसोर्सेज भी थे, ऐसा नहीं था कि वक्त नहीं था, मैं वक्त निकाल सकती थी अगर निकालना चाहती। फिर इंसान ये कहेगा, तब नहीं कहेगा ओ मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था, कहेगा नहीं, मैं निकालना चाहती तो निकाल ले सकती थी, इस मुसीबत के दिन में बचने के लिए मैं कर सकती थी सब कुछ। बहुत सारे ऐसे दिन और महीने और वक्त याद आएंगे कि जो गंवा दिए, माल था मेरे पास मैं पता नहीं किधर ही लगाती रही, अकल थी समझ थी, मैं यही कहती रही नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती, मुझसे तो नहीं हो पाता, मुझसे नहीं होगा, मैं यही कहती रही, बाकी हर जगह पे अकल लग गई थी, लेकिन आखरत के काम के लिए बस अकल ऐसे थी कि बस काम ही नहीं करती। अलकिया फी जहन्नम, डाल दो तुम दोनों, डाल दो अलकिया, दोनों डाल दो, यानी नून था जो गिर गया, यानी दोनों फरिश्तों से कहा जाएगा कि अब इसको जहन्नुम में डाल दो, ये जो गफलतों में रहा ना, तो इसके पास तो कुछ है नहीं, कुल्ला कफ्फार अनीद, ये हर ना शुक्रे के लिए, इनाद रखने वाले के लिए, जहन्नुम में इसको डाल दो। फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है, और ये कैसा बंदा था, जो कफ्फार था, कफ्फार यानी जिसका कुफर जो है ना पक्का था, सख्त काफिर। और ना शुक्रे को भी कहते हैं ना शुक्रा, यानी किस चीज से ना शुक्रा था, अल्लाह ताला की नेमतों का ना शुक्रा, अल्लाह ताला ने जो रसूल भेजे उनकी बातों को ना मान के ना शुक्री की इसने, ये ना शुक्रा ही रहा। और आपको पता है शैतान को भी जब अल्लाह ताला ने निकाला था आसमानों से, तो उसने यही कहा था कि या अल्लाह ये तेरे बंदे ना बड़े ना शुक्रे होंगे, इनमें से अक्सरियत ना शुक्रों की होगी, ये ना शुक्री करेंगे। और इंसान वाकई ना शुक्रा ही तो निकला कि अल्लाह ताला ने उसको जितनी नेमतों से नवाजा, उसके बाद उसने नाशुकरी की। और कुफर इस तरह से भी काफिर हैं कि देखें, इंसान बाज दफा ऐसी बातें कर जाता है कि वो कुफर में एंटर हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। कब होता है, जब गैर अल्लाह की तरफ चीजों को मंसूब करता है, तो ये कुफर है। इसकी मिसाल आपको वो हदीस याद है जो हुदैबिया वाले सफर में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे तो बारिश पड़ी थी रात के वक्त, तो आपने सुबह की तो सहाबा से फरमाया रात की बारिश के हवाले से अल्लाह ताला ने मुझ पे वही भेजी है कि इस एक बारिश की वजह से कुछ बंदे ऐसे हैं जो मोमिन हैं मोमिन हो गए, और कुछ हैं जो काफिर हो गए। यानी क्या मतलब मोमिन हो गए, यानी ईमान उनका और ज्यादा बढ़ गया और निखर गया, और कुछ काफिर हो गए। अब क्या मतलब इस चीज का, आपने फरमाया जिसने कहा कि ये बारिश जो है इसको देख के ये कहा कि अल्लाह का फजल है, उसकी अता है, तो उसका ईमान बढ़ गया, और जिसने कहा ये बारिश फलां सितारे की वजह से है, तो उसने अल्लाह की नेमत को गैर अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, उसने कुफर किया। हम कहते ना हमने सफर किया क्योंकि हमारा सितारे में ये था, और हम हमारे पर ये मुसीबत आई क्योंकि मेरे सितारे की गर्दिश आजकल ऐसी थी, गर्दिश में है मेरा सितारा, इसकी वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आई। और आजकल मेरे सितारा पता नहीं क्या अच्छी पोजीशन में चल रहा है, तो इसलिए मुझे ये चीजें मिल गई। तो ये तो कुफर है एक बारिश के ऊपर, क्योंकि उन लोगों का अकीदा था ये बारिश बरसती क्योंकि फलां सितारे की वजह से, फलां, ये तो कुफर है। तो बस बातें कहना इंसान को कुफर में एंटर कर देता है। तो आप ने फरमाया जिसने उसने कुफर किया, जिसने गैर अल्लाह की तरफ मंसूब किया और वो सितारे पर ईमान ले आया, देखिए ये कुफर का अकीदा होता है। तो इसलिए इंसान को समझना चाहिए इस बात को कि बाज बातें वो मुंह से ऐसी निकाल देता है जिससे कि वो काफिर बन जाता है। और ना शुक्री को भी कहते हैं कुफर, और ना शुक्री भी इंसानों में बहुत एक कॉमन बीमारी है कि सब कुछ होता है फिर भी ना शुक्रिया मुंह से। सोचा करें कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मैं कहाँ खड़ी थी और आज कहाँ खड़ी। आप देखेंगे आपके पास नेमतें मजीद बढ़ी हैं। अब यही देख लें एक कुरान की नेमत, 20-25 साल पहले मेरे पास ये नेमत नहीं थी, ये नेमत आ गई, अल्लाह ताला ने मुझे अता की, और इसके अलावा भी बेशुमार नेमतें। हो सकता है पहले आपके पास अपना घर नहीं था, अब अपना घर हो गया। हो सकता है पहले अपनी गाड़ी नहीं थी, सेटल नहीं थे, या शादी नहीं हुई थी, या बच्चे नहीं थे, अल्लाह ताला ने आपको और नेमतों से नवाजा, नेमतों की बारिश होती चली गई। लेकिन हमारा हाल क्या होता है, फिर भी नाशुक्रापन खत्म नहीं होता, फिर भी हम ऐसे कलिमात मुंह से निकालते ही जाते हैं। आफियत के साथ अल्लाह ताला ने इतने सालों तक सेहत की नेमत दिए रखी, फिर भी हम कहते रहते हैं हाय 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 हाय, लुट गए मारे गए, आए ऐसा हो गया वो हो गया खत्म हो गया सब कुछ, और शुक्र गुजारी हमारे अंदर बहुत कम होती है। जानते हैं अल्लाह ताला को कौन सा बंदा बहुत पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे से खूब राजी होता है जो एक लुकमा खाता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक घूंट पानी पीता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी एक एक लुकमे पे वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। हमें तो पूरा खाना खा के भी याद नहीं रहता कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाह ताला उस बंदे से राजी होते एक लुकमा भी मुंह में डाला ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे सलफ सालेहीन का ये तरीका हुआ करता था। एक के बारे में आता है वो फरमाते थे कि बजाय इसके कि मैं खामोश रहूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहता। तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना इतना बड़ा कलमा शुक्र है, अल्लाह ताला इससे राजी होता है। तो बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमें शुक्र गुजारी करने की जरूरत है, लेकिन हमने कभी आज तक उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं की, कभी सोचा ही नहीं। ला इन शुक्र तुम लाजी तन्ना कुम, अल्लाह ताला ने तो फरमाया तुम शुक्र करोगे ना मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, तुम्हारी नियमतों को बढ़ा दूंगा। तो बहुत ज्यादा जो नाशुक्रा है, और शैतान नाशुक्रिया ही कराता है इंसान से, क्योंकि अल्लाह ताला को यही चीज नहीं पसंद है तो वो इंसान से यही कराता है कि नाशुक्री नाशुक्री हर बात में हाय 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 नहीं खत्म होती हमारी। इंसान ये सोचे कि जिस वक्त नाशुक्री की बात दिल के अंदर आए उस वक्त सोचे अल्लाह तूने मुझे कितनी नेमतों से तो नवाजा हुआ है, मुझे तो नाशुक्री करने का जरा भी सूट नहीं करती नाशुक्री मुझे कि मैं नाशुक्री करूं। जो नाशुक्रा इंसान है उसके लिए जहन्नुम में, और जो काफिर है इसी तरह अल्लाह ताला के अहकामात पे जो अल्लाह ताला ने शरीयत बनाई है उसके ऊपर एतराज करना, या उसको कुछ ना समझना, या उसको कहना कि ये तो है ही अस्तगफिरुल्लाह गलत है और हमारे कवानीन सही हैं, ये कहाँ से ये कवानीन आ गए, ये तो बनाई ही गलत है, ये तो नाइंसाफी हो गई अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये भी इंसान को कुफर तक पहुंचा देता। कुफर में एंटर कर देता है कि अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर इतराज करना और उनको समझना कि ये सही नहीं है। तो हर काफिर और अनीद, ऐनाद रखने वाले, ऐनाद जैसे बुग्ज रखना, ऐनाद रखना, हक को पहचान के भी इनकार करना, ये इनाद है। हक आपके सामने है, हक उसके बावजूद उसको मानना ही नहीं, इताअत से निकल जाना, दुश्मनी रखना। अब इनाद में भी अल्लाह के दीन से दुश्मनी रखना, अल्लाह ताला के अहकामात हैं जो पसंद नहीं आते, बस हर वक्त उनके ऊपर एतराजात है। ऐसे आप बहुत सारे लोग देखेंगे जिनको हदीस से ही इतना इनाद है कि हदीस की बात ना करो, बस हदीस के लफ्ज ही उनको चिढ़ आ जाती है, बुखार चढ़ जाता है। तो उससे बुग्ज है उनको, अल्लाह ताला की बातों से बुग्ज है, किसी को अल्लाह के दीन से बुग्ज है, यानी उनको अच्छा नहीं लगता ये। और ये भी मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो इताअत की से फिर गया, इन्नहु काना लियातिना अनीदा सअरहिकुहु सऊदा इन्नहु फक्कर व कद्दर। ये सूरह मुदस्सिर में अल्लाह ताला ने ये ऐसे बंदे जो अल्लाह की आयात के साथ इनाद रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, उनके बारे में फरमाया। तकब्बुर इंसान के अंदर होता है, बाज दफा इस वजह से इनाद रखता है, अपने आप को ही बड़ी चीज समझता है ना, और बाज दफा दुनिया की मोहब्बत होती है। मन्ना लिल खैर, मन्ना मना करने वाला, जैसे आप कहें, यानी रुकने वाला खैर से और रोकने वाला खैर से, मना करना, यानी जिसको कहते हैं ना, आपको मना कर देते किसी गलत चीज से, तो ये किससे मना करते हैं? खैर से मना करते। होना क्या चाहिए? शर से मना करना। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर होना चाहिए, ये नहीं अनिल मारूफ करते, कि मारूफ से, खैर की बात से मना करते हैं लोगों को। और सबसे बड़ी खैर की बात तो इस्लाम है, तौहीद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, दीन पे चलना है, इससे मना करते हैं। और इसकी बहुत सारी सूरतें हैं, बहुत सारी सूरतें आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे। कई लोग नमाज से मना कर रहे होते हैं, अबू जहल मना करता था ना, सूरह अलक में है ना, वो मना करता था नमाज, कोई नमाज का मजाक उड़ा के मना करते, कई नमाज से दूर ले जाके कोई ऐसी चीजों के अंदर दिलचस्पियों में दूसरे को इन्वॉल्व करते हैं कि ये बस नमाज को छोड़ो ना, नमाज बाद में पढ़ लेना, तुम नमाजें ही पढ़ते रहते हो, मुसल्ली बन गए हो। आप देखेंगे जब सरों से हिजाब खींचे जाते हैं तो ये क्या है? मन्नाएं लिल खैर है ना। जब रोका जाता है सदका क्यों करना, इनको क्यों देना, हमने कोई इनका ठेका लिया हुआ है, बस अब हम ही हर वक्त देते रहे, इनका तो काम ही है मांगते रहना, इस तरह से कहना। कुरान कोई पढ़ने जा रहा है तो उसके ऊपर मजाक उड़ाना। आप देखिए मुशरिकी ने मक्का कैसे मन्नाइन लिल खैर करते थे, या तो टॉर्चर करते थे, इसके अलावा क्या करते थे? रुस्तम और वहां की कहानियां ला के और वो लोगों को बताते थे, ऐसी एक गाने वाली लौंडी रख ली थी जो लोगों को उसमें एंटरटेन करती थी कि कुरान की मजलिस में ना जाए। और यहाँ पे किससे कहानियां, रुस्तम इस्फंदियार की किससे कहानियां सुनते रहे और इसी से एंटरटेन होते रहे, कुरान की तरफ ना जाए। ये क्या मन्नाइन लिल खैर? मन्नाइन लिल खैर हमेशा साफ अल्फाज में मना करके नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होगा कोई कहेगा नहीं तुम ये नहीं करो, इसके भी हरबे होते हैं ना। अब आप कहेंगे काफिर कहाँ मना थोड़ी कर रहे थे, वो तो उनको टॉर्चर ही कर रहे थे, टॉर्चर करना किस लिए था? ताकि बाकी लोग भी मना हो जाए, इतने सहम जाए कि कोई भी इस दीन की तरफ आने की जुर्रत ना करे। तो बहुत दफा इनडायरेक्ट जरियों से मना भी किया जाता है, या एंटरटेनमेंट करके उन मुसलमानों को ये नहीं कह रहे थे आप वहां ना जाओ, लेकिन वो किस लिए कर रहे थे? कि यहां पे आएंगे तो वहां जाना छोड़ देंगे, सारा वक्त ही यहाँ लग जाएगा। कितनी ही चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द जो मन्नाइन लिल खैर वाली हैं, जो खैर के रास्तों से मना करने वाली हैं। बहुत सारी एंटरटेनमेंट्स भी हैं उसमें, जो नमाज को ही भुला देती हैं, जो अपने अंदर इतना गर्क कर लेती हैं कि इंसान उसके बाद ये भूल ही जाता है कि उसने क्या अहम काम करना था, अल्लाह का जिक्र करना था या कोई और चीज खास करनी थी जो खैर की थी। इसी तरह डिस्करेज करना ऐसे कमेंट्स दे के, मजाक उड़ा के, ये क्या है, मन्नाइन लिल खैर ही तो है। तुम तो आजकल बड़ी पढ़ाइयां कर रही हो, बड़ी तुम कुरान पढ़ने लग पड़ी हो, बड़ी क्लासें ले रही हो, बड़ी तुम क्या है, ये मुलानी बन गई हो बस। तो बाज लोग खैर के ताले होते हैं कि उनके पास जो भी बात होगी बस वो कहेंगे खैर को ताला लग जाए, खैर ना किसी तक पहुंचे, खुद भी नहीं किसी को पहुंचाते। खैर का एक माना माल भी है ना, इन्नहु लिहुब्बिल खैर इला शदीद, तो वहां पे माल की बात कही गई ना, खैर माल को कहा गया, तो माल से भी मना करते हैं लोगों को, यानी माल भी ना लोगों को खुद देते हैं ना लोगों को देने देते हैं। माल है तो उससे रोक लेंगे, कोई अपना कोई हुनर है, कोई अपनी कोई एक्सपर्टीज है, उसको भी ताला लगा के रखेंगे। खैर के ताले होते हैं, कुछ शर के ताले होते हैं। हम किसके ताले हैं, खैर के या शर के? इस उम्मत का काम तो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर था, इन्होंने क्या शुरू कर दिया? अमर बिल मुनकर व नहीं अनिल मारूफ, जानते हैं किसकी सिफत कुरान ने बयान की है? मुनाफिकीन की सूरह तौबा में वो ये करते हैं। हम भी किधर किधर खैर से लोगों को रोकते हैं और शर की तरफ बुलाने वाले बन जाते हैं। मेरे सामने कुछ लोगों ने किसी को कहा कि ये जो आपने हिजाब लिया है इसको लेने की क्या जरूरत है, बस ऐसे पीछे करके दुपट्टा सारा सा ले लें सर के पीछे करके, ये हिजाब पूरा कस के लेना इसकी क्या जरूरत है, शादी का मौका है ना, आपकी कोई बालियां नजर आएंगी ना कुछ होगा। तो देखें बाज दफा हम ऐसी बातें करके ना मन्नाइन लिल खैर बन जाते, हम रियलाइज भी नहीं करते। आ जाओ पहले ड्रामा देख लेते हैं, नमाज बाद में पढ़ लेना, शॉपिंग पे चलते हैं कोई बात नहीं है, क्लास बाद में हो जाएगी। मुआतद मुरीब, मुआतद मुआतद यानी हद से निकलने वाला, हदें क्रॉस करने वाला। हद क्रॉस कैसे होती है? जब इंसान जो अल्लाह ताला ने बाउंड्रीज लगा दी है ना कि ये हद है इससे पार नहीं होना, ये हद है इससे आगे नहीं निकलना, वो उस हद से आगे निकल जाते हैं क्योंकि अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी होती है, क्योंकि अपनी मर्जी होती है, दिल करता है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज में ना बाउंड्रीज रखी नहीं, कमाने में, खाने में, इसी तरह आपके मामलात में, विरासत में, लेन देन में, लिबास में, बोलचाल में बाउंड्रीज है ना, ये है आपकी लिमिट। इसके अंदर अंदर रह के आप खाओ पियो पहनो मामलात करो, इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकलना। लेकिन मोहताद कौन होता है? जो इन बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, अल्लाह की हदों से पार होता है, यानी तोड़ता है अल्लाह ताला के अहकामात को, तभी तो बाउंड्री से बाहर जाएगा ना। मोमिन जो है उसके लिए ये दुनिया की जिंदगी क्या है, कैद खाना, क्योंकि उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज लगी हुई जो अल्लाह ताला की हदूद है। वो इनके अंदर रहता तो मोमिन है, इनसे बाहर निकलता है तो फिर वो उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, फिर तो उसके लिए जिंदगी कैद खाना नहीं, फिर तो जो मर्जी करे ना, फिर तो उसकी जिंदगी काफरों वाली जिंदगी है, जो कि जो दिल करता है करते हैं। कहीं शादी के बगैर लिविंग टुगेदर कर रहे हैं, कहीं हराम खा रहे हैं, कहीं नंगे फिर रहे हैं, बाउंड्रीज नहीं, कोई लिमिट्स नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया यासबुल इंसानो युतरका सुदा, तो इंसान सोचता है हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसकी पकड़ नहीं होगी, इसको पूछनी होगी कि तुम बाउंड्रीज में रह के आए या उनको क्रॉस करते रहे। जब जब इंसान अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ के अपनी मर्जी या किसी की भी मर्जी करता है, वो ये बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। मुरीब, रईब से, शक में पड़ने वाला। देखिए ईमान जो है वो ईमान है ही वो जो शक से पाक है, जिसमें शक आ जाए ना वो ईमान ही नहीं है। याद रखिए, ये खुद भी शक में पड़े होते हैं, लोगों में भी शकों को शुभात फैलाते हैं, और ये इतना कॉमन है आज के वक्त में, स्पेशली ये सोशल मीडिया पे इतना कॉमन है ये चीज, शकूक में डालना, लोगों के दिलों में डाउट्स डालना। पता नहीं भाई ये हदीस है, ये तो लिखी ही नहीं गई थी, ये तो प्रिजर्व ही नहीं है, तो अब आप इसके ऊपर कैसे चल सकते। लो जी शक का बीज डाल दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में, आपकी रिसालत के बारे में, और इसी तरह अल्लाह ताला की जात के बारे में भी। अब तो ये हाल है कि अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह की जात के बारे में भी शकूक में डाल दिया कि अल्लाह की जात से ही लोगों को मुनकर कर दिया, इनकार करने वाले। और ऐसे लोगों से मैं खुद मिली हूं जो अच्छे भले पहले मुसलमान थे, उसके बाद आज वो एथीस्ट हो गए। क्या किसी ऐसे ने उनकी जिंदगी में ये शक का बीज डाल दिया? ऐसी कुछ चीजें बताई, ऐसा कुछ पता नहीं क्या दिखाया, ऐसी कुछ मूवीज जिसके अंदर पता चला कि वही है, प्रूवन है कि कोई खुदा की जात है ही नहीं और सब कुछ खुद से चल रहा है। तो ये शक के बीज डालने वाले आज बहुत कॉमन हो गए, स्पेशली यंगस्टर्स को अपने उसमें फंसाते हैं। ऐसे अल्लाह ताला माफ करे, ऐसे प्रोफेसर हैं कॉलेजों में, बाज लोगों की ऐसी भी कहानियां सुनी कि अच्छे भले बच्चे थे लेकिन फलां कोर्स लिया, फलसफे का, फिलोसफी पढ़ने गए और उसके बाद एथीस्ट ही हो गए। तो ये क्या है, मुरीब, शक में पड़े हुए जो हैं, ये खसूसियात उसकी बताई जा रही है, पीछे से ही बात आ रही है, इनको जहन्नुम में जाना, जो काफिर है, जो इनाद रखने वाला है, जो मन्ना लिल खैर है, जो मुअतद है, जो मुरीब है। तो अल्लाह ताला के हाँ वही ईमान काबिले कबूल है जो शक से पाक है, जिसमें शक आ गया तो ऐसे ही है जैसे आप पूरी देह के अंदर एक कतरा भी पेशाब का डाल दें, गंदगी का डाल दें, वो सारी देह खराब है। आप ये नहीं कर सकते कि चलो कतरा तो इधर पड़ा था मैं साइड से ले लूं, नहीं, इसी तरह शक का बीज आ गया किसी जगह भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत में आ गया, हदीस में आ गया, अल्लाह की जात में आ गया, सारा का सारा ईमान गया, आखरत में आ गया कि क़यामत ने पता नहीं आना नहीं आना, इन्होंने ऐसे ही बातें बनाई नहीं है, पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ही जिसको मिलेगा ना अच्छा बुरा, देखो लोगों को मिल रहा है ना, किसी को कोई सजा मिल रही है उसी, बस उसी गुनाह की सजा मिल गई, किसी को बहुत पैसा मिल रहा है, देखिए यहीं पर अल्लाह ताला ने उसको रिवॉर्ड कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, कयामत व्यामत जन्नत जहन्नम कुछ नहीं है, ये सब क्या है, ये शक डाल रहे हैं। और ऐसे लोगों ने फांसा है लोगों को, पर फिर माएं रोती हैं कि क्या करें हम, बीवियां रोती हैं कि अल्लाह अकबर ये कहाँ चले गए शौहर, कोई इन्होंने ऐसे ये सोशल मीडिया पे बैठे उनको कोई लोग वहां पे मिल गए जिन्होंने उनके अंदर ये शक का बीज डाल दिया, अब वो ग्रो किया बीज और बस फिर ईमान ही चला गया। अल्लज़ी जाला मा अल्लाही इलाहन आखर, जिसने बना लिया अल्लाह के साथ एक इला दूसरा। एक तो शिर्क अकबर होता है ना, बुतों को पूजना, या और ईसा अलैहि सलाम की पूजा कर रहे हैं, तो ये शिर्क अकबर है। एक दूसरा शिर्क भी होता है, शिर्क असगर जिसको कहते हैं, जिसमें रियाकारी भी आ जाती है, और बाज दफा इंसान सबसे बुरे माबूद को पूजता है और वो है उसका नफ्स, नफ्स की पूजा शुरू कर देता है। और आज के दौर में तो अल्लाह ताला माफ करे, शैतान की भी पूजा की जा रही है, बाकायदा उसकी पूजा को डिस्क्लोज किया जा रहा है कि हाँ हम सैटनिक वर्शिपर्स हैं। ऐसे भी लोग पैदा हो गए, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया अब्दुद दिरहम, हलाक हो गया अब्दुद दीनार, दीनार का बंदा, दिरहम का बंदा, यानी कि वो अल्लाह का बंदा नहीं है, अल्लाह ताला को इलाह मानने वाला नहीं है, वो तो दीनार को अपना इलाह बना के बैठा हुआ है, डॉलर को उसने इलाह बना दिया, बस पैसा 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 जिधर से आ जाएगा उधर के साथ है, चाहे उसके लिए दीन बेचना पड़े, ईमान बेचना पड़े, काफिर होना पड़े, काफिरों के साथ रह के उनकी हाँ में मिला नहीं हो, कुछ भी हो, बस यहाँ से पैसा मिल रहा है, यहाँ से पोजीशन मिल रही है, डोंट केयर कि हमारा दीन क्या कहता है, बस इलाह उन्होंने माल को बनाया हुआ। तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह बना दिया, व अल्कियाहू फिल अदाब अदाब शदीद, तो डाल दो इसको शदीद अजाब में, जिस अजाब को अल्लाह ताला फरमा दे कि ये शदीद अजाब है, वो कैसा अजाब होगा सोचिए, वो क्या जगह होगी जहां पे कहा जा रहा है कि ऐसे बंदे को शदीद अजाब में डाला जाए। तो यकीन होना जरूरी है, ये ईमानियात जो है ना, 6 ईमानियात, उनमें यकीन होना चाहिए, और अच्छे भले मुसलमान जो लास्ट ईमानियात में तकदीर पे ईमान है ना, उसके मामले में अच्छे भले मुसलमान भी डगमगा जाते, तकदीर पे ईमान का उनको पता ही नहीं, ये तकदीर पे ईमान क्या होता है, हर अच्छाई बुराई नफा नुकसान अल्लाह ताला की तरफ से, तकदीर क्या होती है पता ही नहीं, और ये वहां पे नहीं चलेगा कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर चलते रहे, चलो जी सारे घर वाले तो यही कह रहे थे, लोग तो यही कहते थे, तो चलो कब्र में आपको पता है ना दो तरह के लोगों का जिक्र आया है, एक तो वो है जिसे फरिश्ते सवाल करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इनके बारे में तुम क्या कहते हो, तो वो सही जवाब देगा, तो उनसे वो पूछेंगे, फरिश्ते पूछेंगे उससे तुम्हें कैसे पता चला, वो कहेगा कि मैंने कुरान पढ़ा और इस पे ईमान लाया, तो वो तो बच जाएगा। दूसरा आदमी होगा जिसे पूछा जाएगा ये कौन है, तो कितना आसान जवाब है कि वो भी कह दे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो नहीं कह सकेगा, वो कहेगा मुझे नहीं पता, मैं तो वो ही कहता रहा जो लोग कहते थे, कहता मुझे नहीं पता, वो जो लोग कहते थे मैं भी वही कहता था, यानी दुनिया की रीत जो जमाना कहता रहा। तो यकीन की हद पे जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि इल्म होना चाहिए, इधर उधर की बातें सुनने से यकीन नहीं आ जाता, ये यकीन हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे और आपकी हर बात अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली थी, कोई भी चीज आपने अपनी तरफ से नहीं बताई, और आपकी कही भी बातें हदीस प्रिजर्व्ड है जैसे कुरान प्रिजर्व्ड है, और मेरा उस पर भी ऐसे ही ईमान है जैसे कुरान पे ईमान है, तब तो ईमान सही है, और ये क्या मैंने तो हदीस को ही नहीं मानते, ये तो कोई ईमान ही नहीं है। قال قرينه ربنا, वो कहेगा उसका साथी ए हमारे रब, मा अतगैतुहु वलकिन कान फी ضلال بعيد, अब जब इसको डालने लगे हैं ना तो ये आगे से क्या कहता है, ये अल्लाह मेरा तो नहीं कोई कसूर था, जैसे दुनिया में भी इंसान को आदत होती है ब्लेम करने की, वो कहेगा मेरा तो नहीं सारा कसूर, ये कसूर तो इसका है जो मेरा करीन था, जो मेरा साथी था, यानी शैतान, यहाँ पे करीन से मुराद शैतान है, मेरा साथी था, या दूसरा इसका उलमा कहते हैं बुरा दोस्त, ये भी मुराद हो सकता है, कि कहेगा मेरा क्या कसूर, ये तो शैतान ने ऐसा किया, या मेरा क्या कसूर, ये मेरे बुरे दोस्त, जैसे हम कहते हैं कि बुरी सोहबत में पड़ गया बच्चा तो खराब हो गया, तो वाकई बुरी सोहबतें खराब कर देती हैं, तो अब वो रियलाइज करेगा ना दुनिया में तो इन्हीं सोहबतों में बैठा रहा, और अब उसको पता चल रहा है, अब कहता है नहीं नहीं मेरा तो कसूर नहीं है, ये तो इसका कसूर है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जो बुरा इंसानी दोस्त है ना, जो इंसानी जो शैतान है या बुरा दोस्त जो करीन उसका बनता है इंसानों में से, वो ज्यादा खतरनाक है शैतान के करीन बनने से, क्यों, इसलिए कि वो कहते हैं कि इंसानी जो शैतान है ना उसका दिमाग वहां तक जाता है जहां से जिन शैतान का नहीं जाता वहां तक। तो इसलिए बुरे दोस्तों से भी बच के रहना बेहद जरूरी है। हम दोस्त बना लेते हैं, फिर कहते हैं आप कैसे दोस्ती छोड़ें, वो तो मुझे छोड़ता ही नहीं है। नहीं, इसीलिए तो वला और बरा जो इंसान के ईमान का हिस्सा है, यानी दोस्ती अल्लाह की खातिर, दुश्मनी अल्लाह की खातिर। वो नहीं छोड़ता तो आप छोड़े ना उसको, वो तो नहीं छोड़ेगा। आपको पता है कि फलां दोस्त की वजह से मेरा ईमान खराब होता है, मैं गफलत में पड़ती हूँ, मेरा कुछ भी नहीं रहता, मैं उसके साथ से उठ के आती हूँ तो मैं पता नहीं क्या बन चुकी होती, उसका रंग मेरे ऊपर चढ़ जाता है। तो क्या जरूरी नहीं फिर कि ऐसे दोस्तों को छोड़ा जाए अल्लाह की खातिर? या दोस्ती इतनी प्यारी है कि अल्लाह ताला का जिक्र तो भुला दें तो भुला दें, गाफिल कर दें तो कर दें, मैं दोस्ती नहीं मैंने छोड़नी। तो आज अपनी दोस्तियां चेक करें, किनके साथ उठते बैठते हैं, किनके साथ दोस्तियां बनाई हुई हैं। जो आपके कुरान के साथी होंगे ना, वो अगर इधर उधर बात करेंगे भी ना, तो आप उनको फौरी याद दिला सकते हैं और वो इस तरफ को आ जाएंगे। लेकिन जो आपके बुरे दोस्त होंगे, उनके सामने आप जिक्र तो करके देखिए, तो सबसे पहले तो आपकी जरूरत ही नहीं होगी कि आप कुछ बोलें, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे तो आगे से कुछ सुनेंगे। क्या तुम हर वक्त यही लेके बैठ जाती हो, क्या तुम्हें ये बुरे दोस्त हैं? अव्वल तो आप बोलेंगे नहीं, और बोल देंगे तो फिर आगे से सुनेंगे, और वो सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन जो आपका अहलुल कुरान दोस्त होगा ना, अगर वो कोई इधर उधर की बात हो भी जाएगी ना, आप उसको याद दिलाएंगे, देखो हमने ये बात सुनी थी ना ऐसे, तुम्हें याद है ना, ये फौरन वो अपने आप को करेक्ट करेगा। तो जहन्नुम में फेंके जाने का ऑर्डर जब हुआ, तो ये अब ब्लेम करना शुरू हो गया उसको, और वो आगे से क्या कह रहा है, ऐ हमारे रब, मैं ये उसकी बात है, वो आगे से क्या जवाब देगा? वो नहीं ये कह रहा कि हाँ जी मैंने वाकई मैंने तो ये किया था। कौन उस दिन मानेगा? दुनिया में छोटा सा भी इल्जाम आप किसी पे लगा दें, मैंने नहीं किया, इसकी वजह से हुआ, वो कहते हैं चलो जाओ, हमें क्या कह रहे हो, तुम तो खुद ही ऐसी थी। तो वहां पे वो कहेंगे है हमारे रब, हम मैंने नहीं इसको सरकश बनाया, ये खुद ही दूर की गुमराही में था, इसका अपना कसूर है। तो कौन मानेगा? चाहे वो शैतान तो बिल्कुल ही नहीं मानना उसने, उसने तो उस दिन बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाना और कहना कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंदर एक बस एक ख्याल डालता था। तो शैतान जब देखेगा ना सारा ये काम मुकम्मल हो गया मेरा, तो कहेगा अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैं तो वादा खिलाफ ही हूं, लेकिन मेरा तुम्हारे पर कोई जोर तो नहीं था, मैंने तुमसे कहा ही था, तुमने फौरन मान लिया, अब मुझे मलामत ना करो, अपनी जानों को मलामत करो। तब नहीं इंसान अपने हाथ चपाएगा और कहेगा हाय काश मैंने अल्लाह रसूल का रास्ता इख्तियार किया। वो सोचे ऐसी बात कोई कह दे, ये तुम अपने आप को कहो, तुम तो खुद ही ऐसी थी, तो कितना गुस्सा आएगा जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी आखरत तबाह करके रख दी, अब वो अपना नाम भी मानने को तैयार नहीं। तो वो कहेगा नहीं, अब अपने आप को मलामत करो, ना मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं, ना तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। तो इसलिए वो तो उस दिन बरी जिम्मा हो जाएगा। और जो इंसानी दोस्त हैं, यहीं पे उनका हाल देख ले आप, आज जरा कह के देखें अपने किसी दोस्त को कि तुम्हारी वजह से मैं बिगड़ गई, देखना फिर आपको वो क्या जवाब देता है। यहां पे नहीं मान रहे तो वहां जाके मानेंगे क्या कि हाँ हमें अजाब में डाल दें क्योंकि हमने इसको खराब कर दिया था? जरा कह के देखें कि तुम्हारी वजह से मैं अल्लाह को भूल गई, तुम्हारी वजह से मैं अपनी नमाजें भूल जाती हूँ, वो आपको ऐसे सुनाएंगे ना, तो देख ले फिर इनकी हकीकत यहीं पता चल जाएगी आपको। तो वो कहते हैं वहां पे जाके तो करीन, उसका करीन कहेगा खुद ही दूर की गुमराही में पड़ा हुआ था, मैंने तो नहीं इसको भटकाया। कला अल्लाह ताला फरमाएगा ला तफासी मुल्ला दिया, मेरे पास अब झगड़ने की जरूरत नहीं है, ये अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की इसने किया और वो कहेगा उसने किया, ये ब्लेम गेम की यहाँ पे मेरे पास मत झगड़ो। वकद कद्दम तू इलैकुम बिल वाईद, ये बात देखें मैंने तो तुम्हारे पास वईद को भेज दिया था, यानी क्या मतलब, हुज्जत तो तमाम हो गई, मैंने रसूल भेज दिए, पैगाम भेज दिया था तुम्हारे पास, मैंने तो सब कुछ तुम्हें बता दिया था, रसूलों की जुबानी हर बात क्या हम तक पहुंच नहीं गई, बल्कि आखिरत के हालात तक ये बातें तक पहुंच गई जिन तक रसाई मुमकिन ही नहीं थी हमारे अपने इल्म के जरिए। ये सिर्फ वही के इल्म के जरिए हमें वहां की बातें आज पता चल गई, एक एक बात खोल के बयान कर दी गई। तो तुम्हें तो अच्छा भला समझा दिया गया था ना, तुम्हें अब बातें बता दी गई थी ना, तो फिर मेरे पास आज झगड़ने की जरूरत नहीं है। मा युबद्दिलुल कौलु लदैया, मेरे पास बात बदली नहीं जाती, जो एक फैसला हो गया हो गया। यानी ये नहीं है कि तुम्हारे झगड़ने की वजह से बात बदल दी जाए, या ये कि वैसे ही अल्लाह ताला अपना फैसला बदल दे, कोई सेकंड फैसला कर दे। नहीं, अब अल्लाह ताला के यहाँ बात नहीं बदली जाती। यही मैं आपको जो शुरू में कह रही थी कि ये बात ना समझे कि कभी दिल के अंदर ये ख्याल आए कि हाँ पता नहीं तो होती भी है कि नहीं होती, शायद अल्लाह अपना फैसला ही बदल दे। नहीं, अल्लाह ताला का फैसला कतई होता है, वो फैसले बदला नहीं करते, और ना ही इनके लड़ने से एक दूसरे पे ब्लेम करने से फैसला बदल जाएगा कि ओ हो इसको तो इसने भटकाया था तो चलो जी इसको तो अब सजा माफ कर दी जाए, क्योंकि ये तो कह रहा है ना कि इसने उसको भटकाया, मेरा तो कसूर नहीं। आप बताएं, आप दुनिया में अदालत में जाएं, वहां पे आप कहें जी हमारा तो कोई कसूर नहीं था, ये फलाने ने किया, फलाने ने मुझे गुस्सा दिला दिया था इसलिए मैंने ऐसे कह दिया। जैसे वो आदमी जो तलाक दे देते हैं, कहते हैं जी गुस्सा, बीवी ने गुस्सा दिला दिया था इसलिए, तो क्या वो तलाक माफ हो जाती? नहीं, वो तलाक तो फिर भी वाकई हो जाती। कोई कहे जी उसने मुझे इतना जोश दिलाया कि मैं ये कर बैठा ऐसा काम, और ये इसने मुझे फंसाया था, इसने मुझे ऐसा फंसाया कि फिर मैं इस रास्ते पे चल पड़ा, इसने ही मुझे कहा था, इसने मुझे ये मशवरा दिया था। ये सब बातें ये दुनिया में आप कह सकते हैं, और दुनिया में भी इस पे माफी नहीं है। आप रेड इशारा क्रॉस करें और कहें ये साथ बैठे हुए ना इसने कहा था कि कोई बात नहीं कर लो, तो पुलिस छोड़ देगी क्या? तो वहां पे ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो दुनिया में हमें आंखें खोल के चलना है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। वहां पे जाकर फारिग नहीं हो सकते जी फलां ने कहा था, इसीलिए आपको ये भी कहा जाता है ये जब आप किसी से इल्म लें तो तब भी अंधे होके ना लेना शुरू कर दिया कर, या आपको पता ही नहीं किससे इल्म ले रहे हैं। पता नहीं कभी कोई यूट्यूब पे किसी को लगा के बैठ जाता है, अरे बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलने से क्या होता है? आप ये तो देखिए इन्होंने किससे इल्म लिया। मैं पहले भी आपको कई दफा बता चुकी हूँ, इसी तरह लोग गुमराह होते हैं ऐसे लोगों के पीछे लग के, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी वक्त में ऐसे उलमा आएंगे जो जहन्नुम के दरवाजों पे खड़े होंगे, वो लोगों को जहन्नुम की तरफ आवाज देंगे। वो आज उलमा बन के बैठ गए, चलते फिरते उन्होंने सोचा कि चलो हम यही काम शुरू कर देते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह हुए मैं। और हम कहते नहीं जी, चूंकि हमें बड़ा लिबरल लगता है वो, बड़ी चीजों की आजादी दे देते हैं वो, तो हमें इसलिए लगता है कि नहीं जी इनके पीछे चला जाए। ये तो कहते हैं बेशक ज़कात भी ना दो, ये तो कहते हैं बेशक औरतें पर्दा भी ना करें, ये तो कहते हैं बेशक सारे कोई सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है, सारे एक साथ ही बैठ जाओ, ये तो ये सारी आजादियां देते हैं, तो इनका इस्लाम तो ज्यादा अच्छा है, इनके पीछे चलो। तो क़यामत के दिन जाके ये नहीं कह सकोगे, दीन वो ही है जो कुरान है और हदीस है, बस उसके अलावा किसी की बात भी गलत हो सकती है। हाँ, एक अल्लाह की बात और एक रसूल की बात नहीं गलत हो सकती। इमाम मालिक इतने बड़े इमाम हैं और इतने साल मस्जिद नबी में बैठ के हदीस का दर्स दिया, फिर भी ये फरमाते थे कि इन कब्र वाले के सिवा किसी की बात भी गलत हो सकती, इनकी नहीं हो सकती, फिर भी अंधाधुंध हम चल रहे हैं, क्यों? तो हमें उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो कभी आंखें खोल के देख भी तो लिया करें। तो अल्लाह ताला उस दिन फरमाएगा कि मैंने तुम्हें साफ बता दिया था, बातें साफ खोल के बयान कर दी गई थी, अब मेरे पास कोई बात ना करो, क्योंकि अब फैसला बदला नहीं जाएगा। वमा अना बिज़ल्लाम लिल अबीद, और नहीं हूं मैं ज़ल्लाम, बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला बंदों पर। यहां पर ज़ल्लाम क्यों कहा गया? ये क्यों नहीं कहा गया कि अल्लाह ताला थोड़ा भी नहीं जुल्म करता, या क्या थोड़ा जुल्म कर देता अस्तग़फिरुल्लाह और बड़ा जुल्म नहीं करता? नहीं, असल में यहां पे बताने की बात यह है कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाए अगर कसूर किसी का हो और धार किसी और को लिया जाए, तो बहुत बड़ा जुल्म है ना कि देखिए आप एक मासूम जो बेकसूर है उसको लेके तो आग में डाल दें, और आप जो कसूरवार है उसको पूछे ना, ठीक है? तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। अल्लाह ताला ऐसा बड़ा जुल्म करने वाला नहीं है कि तुम कहो कि जी इसका कसूर था, और तुम बेकसूर थे, और तुम्हें खामखा जहन्नुम में फेंक दिया जाए। इतना बड़ा जुल्म कोई करेगा अल्लाह ताला? वो ऐसा बड़ा जुल्म करने वाला नहीं, ये मुराद है यहाँ पे। ये मतलब नहीं कि जल्लाम आया तो बड़ा जुल्म नहीं करता, अस्तग़फिरुल्लाह के छोटा करता। आप सल्लम ने तो फरमाया अल्लाह ताला ने अपनी जात पे जुल्म को हराम करार दिया, उसने खुद अपने ऊपर हराम किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन अल्लाह ला यज़लिमु मिथक़ाला ज़र्रा, अल्लाह ताला तो जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। लेकिन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कितनी जसारतें इन जुबानों की जो इतनी बड़ी बात कह दे। ये सजाएं, ये तो जुल्म है भाई, ये अल्लाह ताला का हुक्म, ये तो जुल्म हो गया भाई। दिस इज नॉट फेयर। डू यू मीन कि अल्लाह ताला अनफेयर है? अस्तग़फिरुल्लाह, बीइंग अनफेयर का मतलब है कि आपने कह दी कि वो जुल्म करने वाला है। तो ये कितनी बड़ी जुर्रतें हैं लोगों की जो ऑब्जेक्ट करते हैं अल्लाह ताला के अहकामात पे, पर फौरन से कह देते हैं दिस इज अनफेयर, दिस इज नॉट फेयर। एक होता है कि इंसान को बात समझ नहीं आई, वो किसी से समझ ले। एक होता है अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर इतना बड़ा इतराज कर देना। तो अल्लाह ताला तो मिसकाला जर्रा के बराबर भी नहीं जुल्म करता। और औरतों को बहुत शिकायत है कि हमारे साथ तो पता नहीं जुल्म हो गया, आधी गवाही हमारी, हमारी विरासत में कम मिल रहा है, हमें इद्दत हमें क्यों करने को कह दिया गया? अगर किसी का शौहर फौत हो गया, इद्दत का क्यों है? तलाक का हमें क्यों नहीं राइट है? हम भी तीन तीन तलाकें बोल बोल के और इनको फारिग करते, कितने इतराजात हैं। तो यानी कि ये सारे अहकाम जो अल्लाह ताला के हैं, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, क्या किसी औरत के साथ जुल्म है क्या ये? लेकिन हमारी जुबानें खामोश नहीं होती, और इतनी बड़ी बातें करके हम ये भी नहीं फिक्र करते ये ना हम दायरा इस्लाम से बाहर हो गए हों। कई बातें हैं जिनको उलमा ने लिखा है कि ये इंसान को दायरा इस्लाम से बाहर कर देती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है बंदों पे मैं ऐसा जुल्म करने वाला नहीं, इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा ये तो कि अगर बेकसूर को ही जहन्नुम में डाल दिया जाए। तुम तो कह रहे हो तुम बेकसूर हो, ऐसी बात नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला कोई जुल्म थोड़ी कर रहा है कि बेकसूर को डाल दे, तुम्हारा कसूर है तो तुम्हें डाला जा रहा है। यौम नकूलु लिजहन्नम हल इम्तलअती, उस दिन अल्लाह ताला जहन्नुम से फरमाएगा क्या तू भर गई? क्योंकि जहन्नुम में ना जब अस्तग़फिरुल्लाह ऐसे काफरों को, ऐसे नाफरमानों को डाला जाएगा, तो वो बार बार कहेगी कि हल में मजीद, हल में मजीद, हल में मजीद, और हैं और हैं और हैं, बार बार कहेगी, वो भर ही नहीं रही होगी। तो वो और मांगेगी, तो हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक उसमें रख देगा, बस वो कहेगी बस बस, फिर अब यानी मैं भर गई, और उसके बाद उसके अंदर एक सुई के बराबर भी जगह नहीं रहेगी। और मुस्नद अहमद की हदीस में है कि उस वक्त ये सिमट जाएगी और कहेगी तेरी इज्जत और करम की कसम बस बस, और जन्नत में जगह बच जाएगी, वहां पे भी अभी इतनी जगह बाकी होगी। अब देखें इसका मतलब, जो आदम से लेकर और आखिर कयामत तक जितने जिन और इंसान हैं, सबको जन्नत में भी जगह मिल गई और जहन्नुम में भी जिन्होंने जाना था वो चले गए। इसके बावजूद, इतनी मखलूक के बावजूद जन्नत में भी जगह बाकी और जहन्नुम में भी बाकी। सोचे वो जन्नत कितनी बड़ी और जहन्नुम कितनी बड़ी। तो जन्नत में जो जगह बचेगी ना, तो वो अल्लाह ताला पुर करेगा, भरेगा एक नई मखलूक को पैदा करके, और उसको वहां आबाद करेगा। अल्लाह हू अकबर। उन्होंने ना कोई अमल किया ना कुछ है, अल्लाह ताला उनको वहां पे आबाद करे, उसका जो वो चाहे करे। ठीक है, तो अल्लाह ताला इस तरह से जन्नत को पुर करेगा और जहन्नुम में अपना कदम रख के उसको पुर कर देगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक और मखलूक जहन्नुम के लिए पैदा कर दे। सही बुखारी में है कि जन्नत और जहन्नुम में एक दफा बातचीत हुई, तो जहन्नुम ने कहा मैं हर मुतकब्बिर और हर ऐसे इंसान के लिए पैदा की गई हूं जो मेरे अंदर दाखिल होगा, जो के बड़ा यानी ऐसा होगा जो गरूर वाला है, जाबिर है। और जन्नत ने कहा मेरा ये हाल है कि मुझमें कमजोर लोग आएंगे, और वो लोग जो दुनिया में इज्जत वाले नहीं समझे जाते थे। अल्लाह अज्जा वजल फरमाएगा जन्नत से कि तू मेरी रहमत है, मैं अपने बंदों में से जिससे चाहूं अपनी रहमत में दाखिल करूं। और जहन्नम से फरमाया, तू मेरा अजाब है, तेरे साथ मैं जिसको चाहूं अजाब दूं। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल भर जाओगी, तो जहन्नम तब भरेगी जब अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक उसमें दाखिल करेगा, और जन्नत तब भरेगी जब उसमें अल्लाह ताला दूसरी मखलूक डालेगा। और अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म करने वाला नहीं है। तो जहन्नम इसका मतलब कितनी बड़ी है कि वो भारी नहीं रही, भारी नहीं रही। इतने जिन और शैतान और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग और मुतकब्बिरीन और काफिर और ऐसे गुजरे, तब भी नहीं वो भरेगी। तो कितनी बड़ी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे तो फरमाया था, 70 साल की मसाफत एक पत्थर ऊपर से गिराया जाए तो 70 साल लगे उसको नीचे तक पहुंचने में। और वो हदीस जो हमें पता चलती है कि इंसान एक कलमा मुंह से निकालता है जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद गुजरता है, जबकि उसके लिए कोई मामूली बात होती, तो अपना ठिकाना जहन्नम में मशरक और मगरिब के दरमियान तक का जितना फासला है, इतना नीचे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी है जहन्नम, जमीन मशरक और मगरिब के दरमियान जितना फासला है, और 70 साल तक कोई चीज चलती रहे, वो कितनी बड़ी होगी जहन्नम। और वो कहेगी हल में मजीद, तो क्या वो बोलती भी है? ये हमें यहाँ से पता चलता है कि वो उसकी जुबान है, वो बोलेगी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो हदीस के जब जहन्नम को वजी अयोम इदिन भी जहन्नम, जहन्नम को घसीट के लाया जाएगा हशर के मैदान में, तो उसको फरिश्तों ने यानी चेन किया होगा, और हर चेन के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे, चेन्स भी 70,000 होंगी, और हर चेन के साथ फरिश्ते 70,000 होंगे। सोचें कितनी चेन्स में कितने बड़े बड़े फरिश्ते होते हैं जिन्होंने उसको जकड़ा होगा, लेकिन वो फिर भी आपे से बाहर हो रही होगी, गुस्से से फट रही होगी, और चाहेगी हर नाफरमान को निगल जाऊं। अब वो क्यों इस तरह मांग रही है, क्यों वो इतने गुस्से के अंदर है? क्योंकि जो अल्लाह का नाफरमान है ना, उससे अल्लाह की मखलूक भी उससे बोझ रखती है, उससे नाराजगी रखती है। ये तो हम ही अल्लाह के नाफरमानों को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो मखलूक है वो नहीं पसंद करती। इसीलिए जो अल्लाह ताला की पसंद के लोग होते हैं उसको मखलूक भी पसंद करती। चूंटी भी जा रही तो उसने कहा सुलेमान का लश्कर आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों के साथ जो जो अहदीस में बयान हुआ, किस तरह एक ऊंट आके आगे लेट गया, और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहर कर रहे थे ऊंटों को ईद के दिन, तो उस वक्त वो खुद आके आपके आगे लेट रहे थे। अल्लाह ताला की जो मखलूक है, ये तो छोटी बातें, थोड़ी बहुत सी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं कि अल्लाह की मखलूक जो है वो उससे मोहब्बत करती है, जो अल्लाह का फरमाबरदार है, जो अल्लाह का प्यारा होता है, और उससे बोझ रखती है, नाराज होती है जो अल्लाह का नाफरमान है। और जहन्नुम इतनी उस दिन नाराज होगी और इस दिन गुस्से के अंदर होगी कि गुस्से से फट रही होगी कि इनकी जुर्रत कैसे हुई अल्लाह की नाफरमानी करने की। लाओ अब मेरे पास और लेकर आओ, मैं इनको निगल लूं।